server555.com audio production. The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली. पार्ट वन. ऑस्कर वाइल्ड की जिंदगी का पहला और आखिरी नॉवेल. खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. ज़हीन तरीन अफराद समझ जाएंगे ऑस्कर वाइल्ड कहना क्या चाहता है. और कम अकलों के लिए भी शानदार चीज है. हम कहते हैं सूरत नहीं सीरत. ऑस्कर वाइल्ड कहता है सीरत नहीं सूरत. वाइल्ड के मुताबिक बड़ा आर्टिस्ट नेकी और बदी दोनों को आर्ट का हिस्सा समझकर पेश करता है और लोगों पर जोर नहीं डालता कि नेकी ही अच्छी शय है. नेक बनो, नेकी करो. नेकी और बदी दोनों आर्टिस्ट के काम में नजर आनी चाहिए. अब ये कारी की मर्जी है कि अगर गहराई में जाकर कोई मतलब निकालना चाहे, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहे तो ऐसा करे. आर्ट फॉर द आर्ट सेक एंड नॉट फॉर सम मॉरल पर्पस. इस नावल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ऑस्कर वाइल्ड की जिंदगी, उसके स्कैंडल्स और जिन इल्जामात पर उसे जेल जाना पड़ा समझना जरूरी है. मैं जानबूझकर इन अल्फाज को इंग्लिश में ही अदा करूंगा. फॉर वाइल्ड होमोसेक्सुअलिटी वॉज नॉट अ वाइस, rather a sign of refined culture. Novel का आगाज बेजल हॉवर्ड के घर में मौजूद पेंटिंग स्टूडियो से होता है, जहां गुलाब की दिलफरेब खुशबू फैली हुई थी. और जब गर्मियों की हल्की हल्की हवा बाहर बाग के दरख्तों के दरमियान से गुजरती तो खुले हुए दरवाजे से अपने साथ खुशबुएं लाती. कमरे की बड़ी खिड़की में पर्दे लटके हुए थे, जहां से कभी कभी परिंदों के इधर उधर उड़ने का अक्स नजर आता और घास में उड़ती शहद की मक्खियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी. लॉर्ड हेनरी वुटन सोफे में दराज सिगरेट नोशी से लुत्फंदोज हो रहा था. कमरे के वस्त में बड़े साइज की तस्वीर मौजूद थी, बहुत ही खूबसूरत इंसान की, जिससे कुछ दूर बेजल हॉवर्ड बैठा हुआ था जिसने ये तस्वीर बनाई थी. चंद साल पहले वो अचानक कुछ अरसे के लिए गायब रहा, जो लोगों के लिए तजस्सुस का बाइस बना और उन्होंने तरह तरह के नतीजे निकाले. किस कदर खूबसूरती और महारत से इस तस्वीर को बेहतरीन के दर्जे पर पहुंचा दिया है, ये सोचकर आर्टिस्ट मुस्कुराया. मगर फिर किसी सोच ने मुस्कुराहट को खौफ में तब्दील कर दिया. तुमने आज तक जितनी तस्वीर बनाई है उनमें से ये बेहतरीन है. अगले साल तुम्हें नुमाइश के लिए इसे ग्रोनर में पेश करना चाहिए. वो एकेडमी बहुत बड़ी और वल्गर है. जब भी मैं वहां गया तो इतने ज्यादा लोग मौजूद थे जिनकी वजह से तस्वीर ना देख सका, या फिर उसके बरक्स इतनी ज्यादा तस्वीर थी कि लोगों को ना देख सका. और लोगों को ना देख सकना तस्वीर ना देखने से भी ज्यादा खराब बात थी. बेजिल बोला, नहीं ऐसा सोचो भी ना, मैं ये किसी को नहीं दिखाऊंगा. लॉर्ड हेनरी ने धुआं खूबसूरत अंदाज में उड़ाते हुए हैरानी से कहा, तुम आर्टिस्टों की नफ्सियात मेरी समझ से बालातर है. पहले तो मशहूर होने की ख्वाहिश रखते हो और फिर अपनी शोहरत से नाखुश नजर आते हो और चाहते हो कि लोग तुम्हारे मुतालिक गुफ्तगु ही ना करें. जवाब आया, सब कुछ अपनी जगह, मगर मैं अपनी जात को इसमें शामिल कर चुका हूँ. आई हैव पुट टू मच ऑफ माई सेल्फ इन टू इट. ये कैसे मुमकिन है? तुम में और इस तस्वीर के शख्स में तो जमीन आसमान का फर्क है. ये किस कदर खूबसूरत, मगर तुम बिल्कुल नहीं. बेजिल बोला, मेरा मतलब खूबसूरती से नहीं था, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश भी नहीं कि मैं डोरियन ग्रे जैसा खूबसूरत बन जाऊं. तुम असल में मेरा मतलब समझ ही नहीं सके. खूबसूरत अमीर और जहीन लोग खराब और बुरे हालात का जरूर सामना करते हैं. तारीख से ये बात साबित होती है. आम लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं, बल्कि बदसूरत और बेवकूफ ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं. ना हार का खौफ, ना जीत की परवाह, ना लोगों की तबाही का सबब बनते हैं और ना ही लोग उन्हें तंग करते हैं. मगर बुलंद और मुमताज लोगों को जो खूबियां अता की जाती हैं वो नुकसान का सबब बन जाती हैं. शायद वो कहना चाहता था कि खूबसूरती अपने साथ मुश्किलात लेकर आती है. अच्छा, तो इस खूबसूरत शख्स का नाम डोरियन ग्रे है. ओहो, तुम्हें पता चल गया, मैं इसको खुफिया रखना चाहता था. जिन दोस्तों को मैं दिल की गहराई से पसंद करता हूं उनका दूसरे दोस्तों से तذکرہ नहीं करता। वाह वाह, शानदार बात कही। मैं बताऊं, मैं और मेरी बीवी कम ही एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। हमें इल्म भी नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, मगर जब मिलते हैं तो एक दूसरे को हम कहाँ थे इस बारे में फर्जी कहानियां सुनाते हैं। कितना मजा आता है ना जब हम किसी से कोई चीज खुफिया रखते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। वो बाग में जाते हैं तो लॉर्ड हेनरी फिर जानने की कोशिश करता है कि बेजल उस खूबसूरत तस्वीर को लोगों से छुपाना और उसकी नुमाइश करने से क्यों इनकार कर रहा है। बेजल संजीदगी से कहता है, एक तस्वीर जिसकी तख्लीक के वक्त उस पर बहुत ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है तो दरहकीकत वो आर्टिस्ट की शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। जिसकी बनाई जाती है दरअसल उससे ज्यादा बनाने वाले की होती है। उसके जज्बात, एहसासात इस कदर शामिल हो चुके होते हैं कि फिर वो आर्टिस्ट की अपनी ही तस्वीर होती है। इस तस्वीर में मेरे जज्बात इस कदर ज्यादा हैं कि मेरे दिल की खुफिया बातें भी इसमें मुंतकिल हो चुकी हैं। मगर अब ये ना पूछना कि मैं वो खुफिया बातें भी बताऊं। हाँ, ये बता सकता हूं कि कुछ दिन पहले लेडी ब्रैंडन के घर में मेरी मुलाकात डोरियन ग्रे से हुई। न जाने क्यों मैं उसे देखकर परेशान हुआ और ये एहसास मुझ पर गालिब आ गया कि ये शख्स मेरे लिए खुशियों और परेशानियों का बाइस बन सकता है। हमारी दोस्ती उसी जगह पर हुई और अब वो मेरी जिंदगी में इस कदर शामिल हो चुका है कि अगर किसी दिन उससे ना मिलूं तो दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। वो मेरे फन का हिस्सा बन गया है। इन्हीं जज्बात की वजह से मेरे फन में निखार आया और जो तस्वीर तुमने देखी उस जैसी शानदार तस्वीर डोरियन ग्रे की वजह से ही मुकम्मल हो सकी। उसकी मौजूदगी में मेरे जहन में खूबसूरत ख्यालात, सोचें जन्म लेती हैं जो फन को तकवीयत पहुंचाती हैं। तो यही वजह है कि मैं उस तस्वीर को दुनिया से दूर रखना चाहता हूं क्योंकि उसमें मेरे दिल के खुफिया जज्बात और एहसास शामिल हैं। और अभी तो डोरियन को खुद भी नहीं कि मेरे लिए उसकी कितनी अहमियत है, मगर वो मुझे इस कदर अहमियत नहीं देता जितना मैं उसे चाहता हूं। मैं तो उसके लिए एक फूल की मानिंद हूं, जब तक दिल चाहेगा पसंद करेगा और फिर मसल कर फेंक देगा। मगर ये मुझे ही इल्म है कि अब उसके बगैर मेरा जिंदा रहना भी मुश्किल है। लॉर्ड हेनरी ने फूल तोड़ा, उसकी पत्तियां अलहदा करके जमीन पर फेंकता रहा। मैं अपने रिश्तेदारों के जरिए से डोरियन ग्रे से मिलूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इत्तफाक से उसी वक्त डोरियन ग्रे वहां आ गया। बेजिल परेशान था। देखो हैरी, वो कम उम्र है, 20 साल का खूबसूरत और हसास नौजवान। तुम कमाल की गुफ्तगू करते हो, मगर कोई ऐसी बात ना करना जिससे हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। ना ना, परेशान ना हो। लॉर्ड हेनरी ने भी भूरे बाल, नीली आंखों और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाले डोरियन ग्रे को बहुत पसंद किया। डोरियन ग्रे ने सर हेनरी को रुकने की दावत दी कि वो जब तस्वीर बनवाए तो उससे बातें करे। अगरचे बेजल ने इस बात पर खुशी महसूस ना की, मगर डोरियन पर सर हेनरी की खूबसूरत आवाज और शानदार अल्फाज ने गहरा असर छोड़ा। बेजल की गुफ्तगू से अंदाजा लगाते हुए डोरियन ने पूछा, क्या बेजल की बात सच है कि आपकी बातों और शख्सियत के असरात मनफी और खराब होते हैं? सर हेनरी ने जवाब दिया, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से साबित है कि अच्छे असरात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये असर सिर्फ बुरा ही होता है। ऑल इन्फ्लुएंस इज इमोरल। अच्छा, इसका क्या सबब है? मैं बताता हूँ। जब कोई किसी पर असरअंदाज होता है तो दर हकीकत अपनी रूह उसमें मुंतकिल कर रहा होता है। जिंदगी का बुनियादी मकसद अपनी नेचर, फितरत, आदत को समझना है, सेल्फ डेवलपमेंट। मगर फितरी सोचों और जज्बात को नजरअंदाज किया जाता है। देखो, लोगों को खैरात दी जाती है, भलाई के काम किए जाते हैं, भूखों को खाना भी खिलाया जाता है, मगर इन मस्नूई कामों के दौरान रूह की पुकार को नजरअंदाज किया जाता है, वो तड़पती ही रह जाती है। दर हकीकत हम बुज़दिल हो चुके हैं, इसीलिए मौशरे और खुदा का खौफ हम पर गालिब आ चुका है। उसने अपनी सुरीली, धीमी और मसहूर कर देने वाली आवाज में बात जारी रखी। हम अपनी जात, अपनी सोचों की नफी करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। अगर हम अपनी सोचों, अपने ख्यालात, अपने ख्वाबों के मुताबिक जिंदगी बसर करें तो ऐसी खुशी हासिल हो जिसका तस्वुर भी मुमकिन नहीं। कदीम यूनानी खूबसूरती की परस्तिश करते थे, शानदार लोग थे वो, सच्चे लोग। और आज हम बुजदिल लोग, झूठे लोग, अपनी जात की नफी करने वाले लोग, जो अपने आप से झूठ बोलकर नेकी की रट लगाते हैं। बुराई का ये सबक डोरियन पर असरअंदाज हो चुका था और वो अपने आप में तब्दीली महसूस कर रहा था। तो इसीलिए मैं मशवरा दूंगा कि ये दिन भरपूर तरीके से बसर करो, जवानी और खूबसूरती के मजे लूटो। बेजल ने तस्वीर मुकम्मल करके उस पर अपने दस्तखत किए। डोरियन और सर हेनरी दोनों ने आर्ट के उस नमूने की तारीफ की, मगर डोरियन कुछ सोचकर संजीदा हो चुका था। दरअसल उसके कानों में सर हेनरी के अल्फाज गूंज रहे थे कि एक दिन वक्त खूबसूरत चेहरे को ऐसा बदसूरत कर देगा कि किसी का दिल ना चाहेगा कि उसको देखे। तारीफ तो दूर की बात है, उसके मुंह से निकला, काश ये मुमकिन होता कि मैं इस तस्वीर की तरह तमाम जिंदगी खूबसूरत रहूं और मेरी जगह ये तस्वीर बूढ़ी होती रहे। बेजल ने जब कहा कि वो तो ऐसी ख्वाहिश नहीं करेगा, तो डोरियन ने ख्याल किया कि वो दोस्त से ज्यादा अपनी तस्वीर को फौकियत दे रहा है। सर हेनरी ने जो भी कहा था 100% दुरुस्त था, ये तस्वीर जवान रहेगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और फिर तुम उस बूढ़े से मिलना अपनी शान के खिलाफ समझोगे। मगर काश काश कुछ ऐसा हो जाए कि वक्त के असरात मेरी जगह तस्वीर पर पड़े, मेरा हुस्न बरकरार रहे और तस्वीर का हुस्न मान पड़े। अगर ये मुमकिन हो तो जिस चीज की मुझसे ख्वाहिश की जाएगी वो जरूर दे दूंगा। मैं अपनी रूह का सौदा भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इल्म हो चुका है मेरे चेहरे की पहली झुर्री के बाद लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। जवानी जवानी वाकई सबसे अहम शय है, बल्कि बुढ़ापे से पहले ही मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। बेजिल को गुस्सा था कि सर हेनरी की वजह से माहौल खराब हुआ। मैंने गलती की कि ये तस्वीर बनाई जो मुझे मेरे दोस्त से दूर कर रही है। वो तस्वीर को फाड़ने वाला ही था कि डोरियन ने दरमियान में आकर उसे ये करने से रोका और तस्वीर की बहुत तारीफ की। सर हेनरी ने दोनों दोस्तों को थिएटर की दावत दी। बेजल ने इनकार कर दिया क्योंकि उसके नजदीक असल डोरियन ग्रे उसकी तस्वीर थी जिसके साथ वो वक्त गुजार सकता था, जबकि हेनरी और डोरियन ने शाम इकट्ठे गुजारी। सर हेनरी को खूबसूरत और हसीन डोरियन ग्रे के बारे में बहुत तजस्सुस था। वो अपने बूढ़े और अमीर अंकल के पास गया और डोरियन ग्रे के मुतालिक मालूमात ली। हाँ, मैं जानता हूं उसे, लॉर्ड कैल्सो का नवासा। उसकी माँ हुस्न में बेमिसाल थी, मार्गरेट उसका नाम था। एक एक बात ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। उसकी माँ से हर शख्स शादी का ख्वाहिशमंद था क्योंकि वो अमीर थी, खूबसूरत थी, मगर उसने जिस शख्स का इंतखाब किया वो गरीब फौजी था। मार्गरेट का बाप बेटी से नाराज हो गया और कहा जाता है कि बेटी के शोहर को जलील करके कत्ल करने के लिए उसने एक किराए के कातिल की खिदमात ली कि वो लोगों के सामने उसे जलील करके कत्ल कर दे। ऐसा ही किया गया, बाप अपनी बेटी को अपने साथ ले गया, मगर तमाम उम्र उसने बाप से बात ना की और इसी गम में 1 साल के अंदर मर गई। हाँ, यकीनन उसका बच्चा डोरियन ग्रे भी खूबसूरत ही होगा। लॉर्ड हेनरी डोरियन ग्रे से बहुत मुतासिर था, उसका हुस्न लाजवाब है, मगर मैं उसको सिखाऊंगा कि इस खूबसूरती को शोलों की तरह किस तरह इस्तेमाल करके आग लगाई जा सकती है। और फिर एक दावत में लॉर्ड हेनरी और डोरियन ग्रे दोनों ही मौजूद थे, जहां अपने अल्फाज के जादू सर हेनरी ने खूब चलाए और महफिल में सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। डोरियन भी उसकी गुफ्तगू से मुतासिर था और दोनों दावत के बाद एक साथ घूमते रहे। लॉर्ड हेनरी की बातों का डोरियन ने गहरा असर कबूल किया, उसके बताए हुए तरीके अपनाए और नतीजा ये निकला कि वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। सिबिल वेन एक छोटे से थिएटर में रोमियो जूलियट के ड्रामे में जूलियट का किरदार अदा कर रही थी, जिसके हुस्न और अल्फाज ने डोरियन पर जादू चला दिया। उसने हेनरी और बेजल से कहा, मेरे साथ चलो और मेरी मोहब्बत को देखो, उससे मुलाकात करो। ठीक है, जरूर चलूंगा। लॉर्ड हेनरी खुश था कि उसकी तरबियत से डोरियन में निखार पैदा हुआ है। खुद एतमादी और जिंदगी से लुत्फानंदोज होने का फन आया है। सिबिल वेन भी डोरियन को पसंद करने लगी थी और उसे प्रिंस चार्मिंग के नाम से बुलाती। वो गरीब थी और माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि लोग मोहब्बत के नाम पर जिंदगियां तबाह करते हैं। भाई जेम्स जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था उसने कहा कि अगरचे वो दूर जा रहा है लेकिन अगर उसकी बहन को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो वो जिंदा ना बचेगा और जेम्स के हाथों मारा जाएगा। तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com।